जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले
ओम अशरण शरण शरण प्रभुले।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरु राखहि जो को पविधाता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता
गुरु रूठे नहीं को जग त्राता।
गुरु के वचन प्रति तन जाई
गुरु के वचन प्रति तन जाई।
सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धि ताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो तमाम चित्र कथाएं होती है, कह माने कबूतर, कह माने खरगोश, गे माने गधा, ए माने एप्पल। और फिर मिला अक्षर पढ़ने लगे तो भेड़िया भागा, मुन्नी ने स्टिक उठाई पराक्रम सिखाने के लिए, शूरवीर बनो। पूरे वर्ल्ड भर की स्कूलों में चित्र कथाएं फेंकी पड़ी है, लेकिन वही लड़के जब इंटर में चले गए तो ए माने एप्पल नहीं होता। वो कभी भूल के भी नहीं सोच सकते कि कै माने कबूतर होता है। अक्षर का ज्ञान कराने के लिए वो पकड़ा दिया जाए, तरीका है चित्र कथा। ऐसे ही संसार भर के जितने मंदिर हैं वो एक चित्र कथा है। जीव जन्मा है तो अबोध है, और जब तक सत्संग नहीं मिला तो 90 साल का आदमी भी अबोध 5 साल का लड़का ही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। शंकराचार्य 18 वर्ष के थे, ओमंडन मिश्र 75 साल के, तो बोले कुतो मुंडी तुम सिर क्यों मुड़वा लिया, संन्यास तो वृद्धावस्था में होता है, ये हमारा अधिकार तुम्हारा अधिकार नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कृपया क्षमा करें, आप बालक हैं अभी 5 साल के, मैं वृद्ध हूं। ज्ञान वृद्ध है वही वृद्ध है, चमड़ी की आयु पूरी करने से कोई वृद्ध नहीं होता, ये तो प्रकृति का क्रम स्वतः चलता रहता है, आपने इसमें किया ही क्या है, क्या बुढ़ौती आने में कुछ मदद की थी आपने, वो तो खुद ही चली आई भाग के, कपारे चढ़ के बैठ गई। शंकराचार्य एक महापुरुष हुए, उनके हजारों शिष्य थे लेकिन 10 सर्वश्रेष्ठ थे। एक बार शंकराचार्य भिक्षाटन पर निकले, हाँ तो ज्ञान वृद्ध होते हैं वो सदगुरु होते हैं। शंकराचार्य भिक्षाटन पर निकले, वो 10 वरिष्ठ शिष्य साथ में थे, और एक मछली भूंज रहा था मार्केट में। शंकराचार्य खड़े हुए, खप्पर आगे बढ़ा दिया नारायण हरि, तो उसने देखा कि तो शंकराचार्य हैं, सादर प्रणाम किया और एक भुंजी भुंजाई मछली कलौंजी की तरह है डाल दिया खप्पर में। तो 3 शिष्य बहुत खुश हुए, अरे गुरु महाराज अच्छा खाता खोला आज, बहुत दिन से खाने का मन था। उन्होंने झटाझट तीनों ने भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया, मछली लिया और खाया। आगे गए तो एक जगह लाह पिघलाया जा रहा था, जिससे कि वो पहले चूड़ियां बनती थी मोटी मोटी लाह की, पता नहीं क्या नाम था, उसमें कांची मिट्टी लोहा मिट्टी इसका सब का अंश रहता है, वो घोल तैयार कर रहा था ढालने के लिए। कढ़ाई चढ़ी थी आग में, उलट पुलट रहा था चाय की तरह है। शंकराचार्य ने खप्पर बढ़ा दिया नारायण हरि, उसने सादर प्रणाम किया, एक कड़छुली डाल दिया एक चप्पू भर के, करेंगे महात्मा हम मांग रहे हैं कुछ करेंगे और क्या, कुछ लगता है कुछ डालेंगे जाके। गरम गरम पीते चले गए, पी गए। जब वृक्ष के नीचे बैठे दूर बस्ती से दूर, तब पूछा क्यों भिक्षुओं भिक्षा हो गई? तो एक साथ सात जने बोले कि भगवान अभी भिक्षा की जगह हम लोग गए कब थे, अभी भिक्षा नहीं हुई। तुम तीनों चुप क्यों हो जिन्होंने मछली खाया था? बोले गुरु महाराज कुछ तो हो गई कुछ नहीं हुई। बोले क्या हो गया क्या नहीं हुआ? पहले आपने जहां मछली सेवन किया था वहां हम लोगों ने भी किया, और पीछे बोले वो लात था उसमें शीशा और ये लोहा और मिट्टी पिघली हुई थी, वहां हम लोगों ने सोचा ही जाके बाहर जम जाता तो भीतर भी जम जाएगा तो मर जाएंगे, इसलिए नहीं पिया। बोले अरे हजार बार मना किया कि मांस मदिरा मादक पदार्थ उत्तेजक पदार्थ एक परमार्थ के पथी के एक संत के लिए सर्वथा वर्जित है, तुम लोगों ने मांस खा लिया मछली। बोले गुरुदेव आपने भी तो खाया था। तो बोले हमने तो लोहा भी पिया था। तब चुप, उठाया डंडा मारा चार चार डंडा, भाग जाओ तुम किसी लायक नहीं हो, काला मुंह करो घर जाओ, तुम साधु होने लायक नहीं हो। भगा दिया। तीनों अलग एकांत में बैठ के विचार करने लगे, यार गुरु महाराज की परीक्षा में हम लोग तो कच्चे निकले, हम लोग सोचे खाए का खाता खोल दिया, वो तो हम लोगों की परीक्षा ले रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अब रात दिन भजन करके हम उत्तीर्ण होके दिखाएंगे। तल्लीन होके भजन में लग गए। उन सात शिष्यों को तो सात गद्दी दे दिया, सिंगेरी मठ ज्योतिर्मठ चार मठ और कुछ छोटी मड़िया बना रखी थी, और ये तीनों परमहंस निकले। शंकराचार्य के शिष्यों में सर्वोपरि शिष्य शंकराचार्य की स्थिति वाले शिष्य तीन ही निकले जिन्होंने मछली खाया था। तो महापुरुषों की जो ताड़ना होती मार डालने के लिए नहीं होती, दुर्गुण दूर करके सन्मार्ग पे चलाते हुए आपको स्वरूप तक पहुंचा दे, उसके लिए केवल चेतावनी होती है। करुणा सदैव कठोर होती है। दूसरे का लड़का आदि शराब पिए तो बोले भाई बड़े आदमी का लड़का है, तू राजा है भैया, तू नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? और अपना लड़का पी ले तो नींद नहीं आएगी, तुमने कुल में कलंक लगा दिया, हमारे कुल में बीड़ी तक किसी ने नहीं पिया, तू शराब पी रहा है, वंश में कलंक लगा रहा है। 25 खरी खोटी, उन्हें दर्द है इसलिए खरी खोटी। अरविंद टैगोर, उनके चाचा थे अनविंद्रनाथ टैगोर, वो चित्र कथा के बड़े माहिर मर्मज्ञ थे। उनके पास 50 लड़के चित्र सीखने आया करते थे। एक दिन एक लड़का चित्र बना के लाया भगवान कृष्ण का, टेबल पर रख दिया, देखिए गुरुजी ये कैसा है। तो गुरुजी ने देखा और खिड़की से 6 मंजिल ऊपर से फुटपाथ पर गिरा दिया। क्या खाक चित्र बनाया है? तुमसे तो वो पटुए अच्छे हैं जो 2-2 पैसे का चित्र बेचते हैं फुटपाथ पर कृष्ण जन्माष्टमी पर। क्या खाक चित्र बनाया? ऐसा ही होता है चित्र? भागो यहां से, जाओ उन पटवा से सीख के आओ। निकाल दिया डांट के। रविंद्रनाथ बैठे थे बाजू में, उन्होंने कहा चाचा श्री, ये उस गरीब लड़के को आपने भगाया क्यों? उसने जो चित्र बनाया है वैसा आप भी नहीं बना सकते, मैं बचपन से आपकी कला देख रहा हूं, उतना बढ़िया आप भी नहीं बना सकते। तब चुपचाप उठे, 6 मंजिल नीचे उतरे, वो फुटपाथ से चित्र उठा लाए, टेबल पे रखा और लगे रोने। तो बोले वाह, पहले तो मार के भगा दिया, अब रो रहे हैं, अजीब बात है। बोले बेटा रवि, वास्तव में चित्र बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया मैं भी नहीं बना सकता, किंतु उस बच्चे में और प्रतिभा छिपी हुई, और निखार आ सकता है उसकी कला में, उसके निखार के लिए हमने डांट के भेजा है और कोई बात नहीं है। फिर पता लगाया, कहीं पता नहीं चला, घर वाले परेशान, गुरुजी परेशान। 3 साल बाद एक फटे हाल। वो क्या किया कि पटुओं के गांव, जो झोंपड़ियां गांव में बसते थे, पटुओं की एक बस्ती है जैसे यहां ठठेरों की बस्ती इस तरीके से, उनके घरों में चला गया। अब भैया हमें सिखाओ, चचा हमें सिखाओ, मम्मी हमें सिखाओ। वहां उनके गांव की बिटिया भी कलाकार होती है, बिटिया तो आज भी पुरुषों से ज्यादा कलाकार है। उन्हीं से टुकड़ा खा लिया और सीखते सीखते सीखता रहा 3 साल तक। फिर आया, 3 साल बाद आया तो अनविंद्रनाथ ने पहचाना ही नहीं कि ये वही लड़का है। बाल बढ़ाए, खबतुलवास, मजनू की तरह है। और अरविंद भी बैठे ही थे, बोले मैं आपका सागरित, फलाना मेरा नाम है, आपने मुझको सीखने के लिए भेजा था, मैं सीख के आया हूं। निकाला अपना पैड, सन्न देनो एक एक मिनट के अनुपात से 50 चित्र कृष्ण के फेंक दिए सामने। बोले ले देखिए गुरुजी, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, इसको देखिए, इसको देखिए, कहीं बंसी वाला, कहीं माखन की हड़िया में हाथ डालने वाला, कहीं कदम पर चढ़ने वाला, कहीं लाठी लेके जाने वाला। कृष्ण की 50 मुद्राएं एक एक मिनट के अनुपात से सन्न ध्यान लकीर खींच के दे दिया। बोले ले हो अब कैसी है। गुरुजी उठे, गले लगाया, बोले बेटा पहले भी तू लाजवाब था, यही प्रतिभा तुम्हारे अंदर छिपी हुई थी, इसलिए मैंने भगाया। तो सदगुरु जो ताड़ना भी देते हैं वो करुणा होती है, करुणा बड़ी कठोर होती है, करुणा कठोर होती है, लेकिन उसका जो निखार आता है वो लाजवाब होता है, फिर उसमें कल्याण में कोई दाग नहीं होता। तो दरबार बहुत देखा हमने, हमारे गुरु महाराज क्या डंडा चला करे। तो शुरू की घटना है, चित्रकूट अंसी आश्रम, आजकल तो बवाल हो गया है, मेला लग गया है। उस समय जंगली जानवर, मधुमक्खी, पहाड़, पत्थर, बालू, शेर और कुछ नहीं। नदी में वही गंदा पानी। और महाराज को आदेश हुआ था जम्मू कश्मीर से कि वहां जाओ, रहो सती अंसिया, जाओ यही जगह है, यहां रहो, तुम्हें जन्म भर यहीं रहना है। भगवान ने ला के बैठा दिया। पहले डाकुओं से झगड़ा, कोल भीलों से झगड़ा, सांप्रदायिक झगड़ा, फिर सब शांत, सब भगत हो गए और 2-4 शिष्य आ गए। शाम को बैठ के शिष्यों में कुछ सत्संग चला करे। सत्संग चली रहा था तो एक चेले की डंडी, लकड़ी और कमंडल, साधु का ही भेष बड़ा पुराना है, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों मुलक जगीरी में, मन लागो राम फकीरी में। तो वह कुंडी और कमंडल एक ही है, अनायास कमंडल और लकड़े वो डंडा गिरा, खड़ा पहाड़ से खड़खड़ खड़खड़ खड़ नदी किनारे चला गया, ऊंचाई में आश्रम। तो महाराज ने कहा देखा, उस समय वैराग्य की चर्चा चल रही थी, तुम्हारा लौ रूपी वैराग्य रूपी लठिया, कर्म रूपी कमंडल, तुम्हारा कर्म गिरा हुआ है, तुम्हारा वैराग्य गिरा हुआ है, जाओ निराधार विचरण करो। निकाल दिया, वो जाए ना। वो साधक सेवक थे, सोचा कि सेवा करेंगे, भजन करेंगे, किसी तरीके से बहुत कहा फिर भी नहीं जाए। महाराज सोचे जब तक निराधार नहीं घूमेगा इसका कल्याण है नहीं। इतने में एक महात्मा आ गए 12 बजे। महाराज ने कहा देख ये बड़े अच्छे महात्मा हैं, इनके लिए भी भोजन बना ले। तो वो ब्रह्मचारी जी बोले महाराज तीर्थ है यहाँ तो हर समय कोई न कोई महात्मा आते ही रहेंगे, दिन भर मैं भोजन ही बनाता रहूंगा तब भजन कब करूंगा। महाराज का ठीक है, हम आज नहीं खाएंगे, हमारा हिस्सा उन्हें दे दो। मजबूरी थी, बनाना पड़ा। वो महात्मा भोजन कर लिए, महाराज ने कर लिया। जब ब्रह्मचारी जी दूर थोड़ा भंडार घर था, महाराज यहां बैठे भंडार घर उधर, जो अपने परोस के खाने के लिए बैठे, तो महाराज उठ के जान गए कि अब बैठा है, तो चले गए, थरिया पकड़ के खींच लिया यूं और गर्दन पकड़ के उठा दिया, दुई झापड़ मारा, तो और बाप कमा के लाया रहा जो परोस के खाए खातिर बैठ गया। भाग यहां से, कहता भजन कब करूंगा, जा कर भजन, निकल जाओ बस। तो सीढ़िया उतर गए, 20 मिनट खड़े रहे, जानते थे कि महाराज का गुस्सा 15 मिनट का, 10-15 मिनट का, अभी ठीक खुश हो जाएंगे, सोचा खुश हो गए होंगे। जब सीढ़िया चढ़ने लगे तो बोले सीढ़िया में पांव मत रखिए, नहीं तो आज तुम्हार गुड़वा तोड़ दे, तुम्हारा पांव तोड़ देंगे। तब मजबूरी थी, जब रखी नहीं रहे तो फिर चले रोड रोड, तो एक पहाड़े उधर से चला आ रहा था, ब्रह्मचारी जी को दंडवत किया, ब्रह्मचारी जी आंखों में आंसू थे, चले जा रहे थे, उनकी ओर देखा ही नहीं। तब पहाड़े दौड़ के आया, गुरु महाराज जी आज ब्रह्मचारी जी मुंह लटकाए आंखों में आंसू भरे कहां जा रहे हैं। तो महाराज के मोरे ऊपर नाराज होके जाते, देखो ना कैसा चूतर टेढ़ा करके जाते, अरे चले आओ ब्रह्मचारी जी, महाराज खुश है, जाओ घूमे वापस। तो बोले घूमी है ना, नहीं तो काट के आज तो के नदियां फेंक दे। मजबूरी थी, जाना पड़ा। आगे जब गए, रात हो गई, जंगल में जंगली लोग एक झरने के किनारे लाश फूंक रहे थे। स्वामी जी ब्रह्मचारी जी ने सोचा ये फूंक फांक के चले जाएंगे और मैं इसी धुने पे बैठ के तापूंगा। जाड़े के दिन थे, कड़ाके की ठंडी थी, और डांट के भगा दिया ने कपड़ा ने लगता, एक चदरिया भर लिए थे, बोले इसी को तापूंगा। उन्होंने धुना जलाया, नहीं वो मुर्दा फूंका और चले भी गए। ब्रह्मचारी जी बैठ भी गए। 12 बजे करीब याद आया, ये लाश फूकी गई है, कहीं भूत ने हो गया हो तो हमें पकड़ ले। तब डर लगने लगा, तब गुरु महाराज भगवान भगवान ओम ओम जल्दी जल्दी जपने लगे। मुसीबत में भगवान बढ़िया याद आते हैं। फिर आंख बंद करके जपने लगे, फिर सोचा वो जी के खड़ाने हो गया हो, आंख खोल के देखें, फिर आंख बंद कर ले। तो इतने में बड़ी जोर से डांट पड़ी, गुरु महाराज की आवाज जो सामने आमने सामने बैठ के बोलते थे ना, वो 10 किलोमीटर दूरी से दूर है, महाराज हैं ये ब्रह्मचारी यहाँ जंगल में झरना किनारे अकेले रात में। तो वो बड़ी जोर से आवाज आई, बोले क्यों रे, मैं तोरे साथ साथ चलत हूं, तोर रखवाली करत हूं, तब तू कोने भूते से डरत है रे, तब कोने भूत से डरता, जब मैं तुम्हें देखत हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तब कौन से भूत से डर रहा है, गंवार कहीं का, कर भजन। डांट पड़ गई, अब कहां का भूत और कहां का प्रेत। वही वो शमशान की राख बिछाया, उसी में आराम भी किया, भजन भी किए मस्ती में, भूत जन्म भर के लिए चला गया। तो जो सदगुरु होते हैं वो स्वरूप से सदैव साधक के आगे पीछे रहते हैं, एक तिल भर की दूरी नहीं होती। ये भजन जागृति के पश्चात सदगुरु जब हृदय से रथी हो जाते हैं, तो आप समुद्र पार चले गए तो बिल्कुल आमने सामने हैं, हाथ पांव नाक आपके जितना करीब है उतने ही करीब है, और यदि जागृति नहीं है तो सामने बैठे हो तब भी समुद्र पार हो कोई मतलब नहीं। भजन एक जागृति है। 1.5 साल बीत गया, महाराज कहा करें बढ़िया चल रहा है वैराग्य उसका, बेटा के लगा है चटकना, मुंह फुला के गया है, बढ़िया भजन चल रहा है, प्रण कर रखा है कि भगवान मिल जाए तब लौटूंगा। एक दिन महाराज चौके, बोले अरे अब तो गड़बड़ है, अब तक वैराग्य ठीक था, आज से गड़बड़ है, अब उसकी घड़ी टल रही है, अब उसको आश्रम में चले आना चाहिए, वो अन्यथा उसकी खैरियत नहीं है। इधर महाराज चिंता करने लगे, उधर ब्रह्मचारी जी को अनुभव मिलने लगा कि जल्दी आश्रम चलो, महाराज बुला रहे हैं, बोले भगवान मिल जाएंगे तब भी जाऊंगा। तब फिर दूसरे दिन डांट पड़ी अनुभव में, तू सोचता मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, जाके चरणों में गिर, गुरु महाराज से क्षमा मांग, इसी में तुम्हारा उद्धार है, कल्याण है। तब भागे वहां से। वो वास्तव में महाराज को जिस पल अपशगुन होने लगा उसी पल एक महारानी साहब भगत हो गई थी प्रयागराज में। वो अपनी कार में बैठा के घुमावा करे तीर्थ, वो भगत थी वास्तव में, घुमाया करे। तो जहां आदेश हुआ कि तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, नहीं जा गुरु महाराज के चरणों में गिर, माफी मांग, तभी कल्याण है। तब कहां के राजा और कहां की रानी अर्ध रात्रि को उठे, पैसेंजर गाड़ी पकड़ा, जंगल में, घोर जंगल में एक टिकरिया स्टेशन अब भी है, वहां उतर गए, पैदल ही चलने लगे आश्रम की तरफ, जंगल की ओर। महाराज क्या बड़ा राड़ी है, आना नहीं चाहता था, मैंने उसके नाक में रस्सी डाल के पतंग की तरह लाके यहां पटका है, अभी आते है, रस्ते में है, खींच के लाना पड़ा है, आ रहा है, बस करीबी है। 1.5 साल का गया हुआ साधक, 1.5 साल बाद महाराज कहते हैं अब इतनी दूरी है, अब उतनी दूरी, अब करीबे है, आते हुई किसी को विश्वास न हो कि महाराज सच बोल रहे हैं, इतने में दिखाई पड़े। महाराज का मन रहे कि कब आ जाए, और जहां दिखाई पड़े तो 25 ठेकरी खोटी सुनाए, ले इन्हें दो रोटी का कहूं ठिकाना नहीं है। फिर चला आया मोरे कपारे पर, इन्हें खाए के दो, रहे के दो, हर दे हरवा दे, खोदे का डंका पहना दे। ये उनसे ये फ्रेज बहुत चलते हैं। तो बोले इनको खाने को दो, रहने को दो, ये करो, ज्ञान दो। फिर मोरे कपारे में पड़ गया, ये भैया के दो रोटी का कहूं ठिकाना नहीं, फिर ये आ गया मोरे कपारे पर। लेकिन ब्रह्मचारी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस सीधे जाके साष्टांग दंडवत किया, तब खुश हो गए। बोले बेटा कैसा वैराग्य रहा? बोले गुरु महाराज बहुत अच्छा रहा, हर समय आप छाया की तरह आगे पीछे रहे, हम नहीं चल रहे थे, आप ही चल रहे थे। तो बोले ये बता, 3 दिन से बड़ा अपशगुन होता रहा, क्या बात है? बोले गुरु महाराज एक रानी साहब चेत गई थी, वो अपनी गाड़ी में बैठा के प्रयागराज मंदिर मंदिर घुमा रही थी। बोले करे सारे हम तो के भजन करे, वैराग्य करे, भेजे रहे कि रानी चेतावे। फिर 2-4 झाड़ दिया। तो ये जो कड़वी बोली है, तो महापुरुष करुणा सदैव कठोर होती है। आस्ते आस्ते साधना में निखार आ गए, वो महापुरुष हो गए। और इसीलिए दुनिया के सताए लोग, अमेरिका में आत्महत्या बहुत होती है, भारत में बहुत कम। क्यों? कि घर में जब खटपट हुई तो चले गए महाराज के यहां, और 4 दिन चाय पिया, बुद्धि हो गई ठीक। अब क्यों मरे भैया जब ठीक है ठीक है। सदगुरुओं का एक दरबार है, गुरु नानक के यहां अकाल तख्त, कबीर चौरा, ये सब उनके दरबार की चौकी, इस चित्त की स्थिरता का परिचायक है ये। वो एक दरबार, तो दरबार बहुत देखा हमने, तेरे दरसा कोई दरबार नहीं। किसका दर? जब शीश झुका गुरु चरण में, तब जन के सिर कोई भार नहीं। जब गुरु के चरणों में शीश समर्पण कर ही दिया, तब उस सेवक के सिर पर कोई भार नहीं। उठाना बैठाना, भूतों से जीव से बचाना, साधना के प्रशस्त, साधना सीखना, प्रशस्त पथ पर ले चलना, जहां समर्पण करते बन गया। जब शीश झुका गुरु चरणन में, तब जन के सिर कोई भार नहीं। दरबार में सच्चे सदगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु, साचा सदगुरु ना मिला, मिली न सांची सीख, और भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। वास्तव में जो सत्य से संयुक्त है सदगुरु है, वो ब्रह्म वेता ब्रह्म भक्ता सूरत गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। ब्रह्म से वित्त हो ब्रह्म के विषय व्यक्त करते चल कर सकते हो, सूरत मन की दृष्टि का नाम है, मन की दृष्टि को घुमा कर साधना के पथ पर ले चलते हो, पकड़ कर चलाने में समर्थ हो साधक के मन की दृष्टि को, ये सदगुरु के लक्षण है। मोक्ष की इच्छा रखे वो शिष्य तो दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मानसिक दुख देहिक देविक भौतिक ताप तीनों ताप मिटाए जाते हैं, और वहां शरण में फुराए सताए लोग ही पहुंचते हैं। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए हुए लोग यहां सीने में लगाए जाते हैं, और जब आदमी दुखी होता है तो चला आता है। यहां हम साधु बने तो जितने बैठे हो इतने इधर साधु दिखाई पड़ते हैं, रोज समझा बुझा के हमको भेजना पड़ रहा है, कहें बस महाराज अब यहीं रहेंगे कहीं नहीं जाएंगे। हम बोले बवाल क्या है, पूछ लेते हैं बता देते हैं, समझ में आ भी जाता लौट भी जाते हैं। तुलसीदास दुनिया का सताया हुआ एक लड़का, जन्मते ही मां मर गई, ज्योतिषाचार्यों ने कहा दुबे तुम भी मर जाओगे सब मर जाएंगे, ये तक्षक है इसको फेंक दो इसको मार डालो। तुलसी को ज्योतिष कहता है कि बिल्कुल तक्षक है, उन बेवकूफों की ज्योतिष ये नहीं कह रही थी कि संसार का उद्धार करने वाला एक संत है, वो ज्योतिष लगता है दुनियादारी पढ़ावा करते है। भगवान का हाल वो भी नहीं जानती। तो फिर बाद में मां मर गई, दुबे जी ने त्याग दिया फेंक दिया, तो चुनिया नाम की गांव की गरीब महिला थी, उसने बच्चे को देखा उठा लिया, तो घर वालों ने कहा अरे, सास बोली वो उसी का लड़का है, वो देख उसको मां मर गई तुम भी मर जाएगी, बोले हम 100 बार मर जाएं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। चुनिया ने पाला, कुछ दिन बाद मृत लोक तो है, चुनिया भी मर गई, और चुनिया ने पाल रही थी दुबे जी उधर मर गए, बच्चे को फेंक दिया तब भी मर गए, और अब उसको कोई रोटी नहीं दे, लोग दरवाजा बंद कर दे, बोले देव मत ये तक्षक है, जो जो ही दूध पिलाता उसी को काटता है। मंदिर में गया तो मंदिर के पुजारी ने दरवाजा बंद कर दिया, बोले भाग भाग ना लाए कहीं का, और उम्र थी तुलसी की 7 साल करीब। तो एक नरहरिया दास नरहरिया नंद एक महात्मा उधर से निकले, बोले ये बालक क्यों रो रहा दूर खड़ा होके, बोले ये अभागा है फलाने का लड़का है, और इसको जो दूध पिलाता वही मर जाता, अब खाए बिना मर रहा है खाने बिना मर रहा है। तो वो महात्मा ने कहा अच्छा अच्छा इतना खराब है, आओ आओ बेटा तुम डरो मत। सिर पे हाथ फेरा, ले गए कुटिया में और लगे पढ़ाने, जितने उस जमाने के छात्र थे सबसे ए बन निकला, परीक्षा में उत्तीर्ण, और ब्राह्मणों में कायदा भी। तो दुनिया के सताए लोग यहां, वो दुनिया का सताया वही तो था, और मुनारहरिया दास जी ने सीने से लगा लिया, तुलसी तुलसी हो गए। तो दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए हैं जाते हैं। भगवान का भजन एक मस्ती है खुमारी है एक नशा है। तो यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहां है मतवाला, भर भर के जाम इबादत के यहां सबको पिलाए जाते हैं। ये महफिल मस्तानों की है, भजन में डूब कर मस्ती में झूमने वालों की है, हर शख्स यहां है मस्ताना, कारण कि प्रभु के भजन इबादत माने संपूर्ण साधना, भर भर के जाम इबादत के, योग साधना की जागृति के, तो भर भर के जाम इबादत के, संपूर्ण भजन की एक जागृति। भजन लिखने में नहीं आता, वाणी से कहने में नहीं आता, वो किसी किसी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करता है किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा, तो भर वो जागृति वहां मिलती है। तो भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। वहां कोई जाति पाति नहीं पूछता, कारोबार भी नहीं पूछता, लगन होनी चाहिए साधक में। ये भी नहीं पूछता कौन मजहब का है, हिंदू हो मुसलमान हो कुछ नहीं, अधिकारी मनुष्य है तो डिग्रियां तो बाद में करोड़ों अतीत में खो गई, आज है वो कल नहीं रहेगी। नहीं है मालूम पूर्वज पहले यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर कहलाते थे, फिर बानर भालू रिक्स है गज नाग मंडूक, ये जातियां थी पूर्वजों की। मंडूक राज नागराज और नाग कन्या से बिया हुआ था अर्जुन का, तो क्या वो सर्पणी थी? आप लोगों के पूर्वजों की उपाधियां थी। आज जो नाम है कल वो भी धूमिल पड़ जाएगा। इसलिए ये मजहब तो साधना की शुरुआत की मिडल तक का कोर्स क्रम है। जहां भजन जागृत हुआ तो ईश्वर एक, पाने की विधि एक, साधना पद्धति एक, संरक्षक एक और दर्शन स्पर्श और प्रवेश स्थिति एक, फिर कोई संप्रदाय नहीं है। और वो ऐसा संपूर्ण शास्त्र आपका श्रीमद् भगवद् गीता है, जिसका भाष्य यथार्थ गीता, जहां मिले देख लेना ढूंढ लेना, चार बार पढ़ लोगे तो बस एक एक प्रश्न अलग अलग हो जाएगा। तो ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ है मस्ताना, भर भर क्यों मस्ताना, वो रोज पिलाया जो जा रहा है, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। लेकिन आदमी वहां आने में थोड़ा कतराते हैं, ऐ जग वालों क्यों डरते हो, इस दर पे शीश झुकाने को। रे दुनिया वालों, यहां सिर झुकाने से क्यों कतराते हो, क्यों डरते हो? ऐ नादानो, यह वह दर है जहां शीश चढ़ाए जाते हैं। तो यदि तुम डरते हो तुम नादान हो, अबोध बालक हो। ये वो स्थान है जहां शीश भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे चरण धरे सो बैठे घर माही। प्रेम बिकंता में सुना जो सिर साटे ले, सिर दे दो बदले में प्रेम ले लो। लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले, राजा रानी जही रुचे शीश दे ले जाइए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम बगीचों में नहीं पैदा होता। प्रेम न हाट बिकाए, वो हाट बाजार में नहीं बिकता। राजा परजा जही रुचे शीश दे ये ले जाए, शीश दे दो और प्रेम ले लो। शीश देने का अर्थ होता है, शीश का काम है सोचना विचारना निर्णय लेना और उस निर्णय के अनुसार चलना। ये जिम्मेवारी गुरु महाराज के चरणों में सौंप दो। वो क्या आदेश देते हैं, सदी सदाई क्या निर्देशन देते हैं साधना की पद्धति का। सोचना हमें नहीं, वो सोचा सोचाया भगवान क्या कहते हैं उसको समझो, अपने मस्तिष्क में उसको धारण कर लो, उनका मस्तिष्क ले लो और अपना मस्तिष्क भेंट कर दो। फिर डेड चावल की खिचड़ी अलग से मत पकाया करो, आज्ञा पालन ही भजन है। तो ए नादानो, यह है वह दर है जहां शीश चढ़ाए जाते हैं, तो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। लांछन लगाने वालों ने पता नहीं क्या लाख लांछन लगा दिए, मीरा छिनार है, मीरा बाहर कहां गई थी, ये सब लांछन ही तो है। और भरी सभा में चित्तौड़ महाराजा का दरबार लगा है, दरबार में 10-11 पंडितों ने बैठ के मीरा पर अंजाम लगाया, मीरा तुम एक रात से ज्यादा बाहर रही, तुम्हारे ऊपर आरोप है, तुम्हें मालूम है तुम्हारी सजा क्या है? मीरा ने कहा मैं अपनी मृत्यु की सजा के लिए आपको क्षमा करती हूं, दे दो मृत्यु कोई बात नहीं, मैं आपको क्षमा करती हूं। तो बोले तुम पति के घर से, बोले मेरा पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पति नहीं हमारे पास, वही है। और सच थी, तब फिर जहर का अल्जाम भी लगाया, जहर का प्याला दे दिया, मीरा ने भगवान को भोग लगाया और पी गई और बिना उठाया अपन चल दी फ्री। बोले अब तुम्हारी महारानी तो मर चुकी, अब मीरा मीरा है। पूरा चित्तौड़ चरणों में गिर पड़ा, कितने कितने इल्जाम लगे मीरा के ऊपर, कहीं मजीरे की आवाज सुन लेती तो चमरोटी में चली जाती है। अरे महारानियों को अपने स्तर वालों में उठना बैठना चाहिए, ये भी एक रोग है। प्रहलाद के ऊपर इल्जाम लगाया, वो इल्जाम कथा बन गई, वो संत महिमा के अंतर्गत आ गई, एक महापुरुष की एक जीवन चरित्र में आ गया। तो इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर लांछन लगाने वालों ने लाखों लांछन लगाए, किंतु भगवान की तरफ से मिलने वाला उपहार समझ के, तेरी सौगात समझ करके, भगवान के भेजा हुआ तोहफा समझ करके, उनका प्रसाद समझ के, उपहार समझ करके, अनुकंपा समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं, हम सिर पे चढ़ाते चले जा रहे हैं। कबीर का जब नाम हुआ तो काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने उसके पीछे एक बेसिया लगा दिया, उसको दे दिया होगा 10-5 हजार रुपया, बोले तुम ऐसा ऐसा कर। तो कबीर जब बाजार में आए, बाजार की गली से गुजरने लगे, तो बेसिया ने दौड़ के चरण पकड़ लिया उसका, दोनों पांव पकड़ के सिर चरणों में रख के लगी चिल्लाने, हमारा पुराना ही धंधा ठीक था, हमें रखा क्यों आपने? 3-4 दिन से मैं पेट की अग्नि से भूखे मर रही हूं, हमारा वही धंधा ठीक था, आपने छुड़ाया क्यों, हमको रखा क्यों? तब वो जिन्होंने लगा रखा तो देने भाई छिपे हुए थे, उतरी आए सड़क पर, देवी जी क्या बात है, क्या बात है? बोले हमको रखा क्यों? तो बोले देखा भाड़ तपस्वी को, पर्दा फाश हो गया, हम जानते थे साला जुलाह बड़ा गलत है, देखो इससे कोई कुकर्म नहीं बचा, ये तो वेश्यों का नाच भी देखता है। कबीर ने सोचा मामला गंभीर है लगता है, तब बोले कबीर कुटिया में दाना है तो आप भूखे क्यों मर रही, चलो कुटिया में आपकी सेवा होगी। ले आए, गाली देते हुए लोग पीछे पीछे आए, जब कुटिया रह गई 1-2-4 बीघा, तो बोले इसके परिसर में मत जाओ, इस नीच की जमीन में पांव रखने से तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें नहाना पड़ेगा। गाली देते हुए लोग आए, कबीर ने फूल निकाला बगीचे में से, कुटिया में 2-4 फूल पेड़ तो होते ही हैं, और चरणों में फेंकते हुए कहा माता जी जन्म भर सेवा करूंगा, यही कुटिया है, आप यही निवास करें। भगवान से 1 महीने से मैं रोज विनती करता था, प्रभु कोई कहता इस प्रश्न का उत्तर दे दो, कोई कहता लड़की का विवाह नहीं हो रहा, कोई कहता मुकदमा है, कोई कुछ। हमने भगवान से ये निवेदन किया प्रभु ऐसी कुछ अनुकंपा करें, ऐसी युक्ति लगा दें तो हमारे पास कोई नहीं आवे, मैं रहूं और आप रहें। तो भगवान ने सुनवाई कर लिया माताजी, इसलिए आपको भेज दिया और आप बेफिक्र रहें, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, ये कुटिया आपकी, जो दिखाई पड़े छानो घोटो। समझ गई कि महापुरुष हैं चोटी के। तीसरे दिन जाना था राजा साहब को कथा सुनाने, इसीलिए खड़यंत्र हुआ ही था। लोगों ने कहा अरे एक से एक चोटी के विद्वानों के होते हुए जुलाहे से आप कथा सुनोगे, ये नीच है, अधम है, जुला है, दोगला है। बोले नहीं, हमने बहुत नाम सुना है, मैं अवश्य सुनूंगा। तब फिर पतरिया वतरिया लगा दिया पीछे। कबीर जानते थे कि इसलिए तो आई है राजा तक हमारे साथ चलने के लिए। बोले चलिए माता जी, राजा साहब के यहां से निमंत्रण है। वो टुनक टुनक पीछे चल गई, 10,000 रुपया हजम तो करना था इसलिए चल दिया। और उधर वो लोगों ने पता लगा रखा था कि पीछे पीछे आ रही है कि नहीं। बोले आ रही है। तब बोले हजूर इतना निर्लज है, पतुरिया रखे आपके इस पवित्र दरबार में भी कहीं वो अप्सरा को लेके नहीं चला, अभी उसका कोई भरोसा नहीं, बड़ा निर्लज है हजूर। तब राजा बोले कुछ नहीं, मैं अवश्य सुनूंगा सत्संग। जहां पहुंचे, जहां कबीर साहब पर निगाह पड़ी राजा की, पीछे वो पतुरिया थी। उसने कई बार राजद घराने में भी डांस वांस किया था, पहचाना। बोले मंत्री परवर बस बहुत हो चुका, अरे रखा था तो रखा था, कोई बात नहीं थी, हमारे पास भी 4-6 रोज नाचाई करती है, लेकिन दरबार में तो शिष्टाचार से आना चाहिए था, बहुत हो गया, बस मना कर दो। मंत्री आया, बोले बस जाइए कबीर साहब। तो बड़े शान से कबीर वापस घूम गए। इतने में वो पतरिया पैसा फेंक दिया रोड पर, बोले ये ले जिसका पैसा है, हमें नहीं चाहिए। एक तो दुर्लभ मानव तन मिला, सिर फिरे लोगों का दिल बहलाने के लिए दिन भर टिनिक टिनिक डांस करना, और अंत में ये एक महान महापुरुष है, उसको मैंने 4 दिन अजमाया है, ये महापुरुष है, इनकी तपस्या खंडित करने का कार्य कर रही हूं, अगला जन्म पता नहीं किस अधम योनि में मिले, ये लो अपना पैसा, ये महापुरुष है, इन्हीं में से ही 10,000 के नाती हमें उकसा के लगाए रहे। राजा सिंहासन से उतरे और आगे आए और प्रणाम किया, चलिए महाराज सत्संग सुनाइए। बोले राजन आज इतना सत्संग बहुत है, राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बाकी भविष्य में। और निकल गए। तो कोई खड़यंत्र नहीं सृष्टि में, जो भी आ रही भगवान की सौगात आ रही है, उनकी अनुकंपा बरसती है, और कहीं कुछ नहीं है। लोग दृष्टि में थोड़ा अटपटा लगता है, सच्चा यदि संयम है तो कोई हर्जा नहीं, तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। कबीर ने ना ही नहीं किया, स्वीकार कर लिया, सिर पे चढ़ा लिया। ए जग वालों जिन प्यारों पर है खास इनायत, सदगुरु की उनको ही संदेश आता है, और वो ही बुलाए जाते हैं। ये संसार वाले लोगों ध्यान से सुनो, ये जग वालों जिन प्यारों पर भगवान, जिनको जानते हैं कि मेरा प्रिय है, मेरा भगत है, मेरा अनुरागी है, जिन प्यारों पर है खास इनायत सदगुरु की, सदगुरु की खास अनुकंपा है, अर्थात सदगुरु से वो वजन जागृत है, तो उनको ही संदेश आता है, उनको भगवान की तरफ से बराबर संदेश आता रहता है, कभी आकाशवाणी से, अंग फड़कन से, स्वपन से, चल उड़ते हुए पक्षियों से, चलते हुए पशुओं से। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं तो सब जगह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। गगन मंडल में पिया गोहराइन, आवागमन की फिकर मिटी, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी। तो उनको उनको ही बुलाया जाता है, बोले आओ तुम अब मेरे हो। तो मांगना है तो भगवान से, दुनिया से क्या मांगोगे, उसके पास है क्या जो दे देगी। इस दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारन है। ये दुनिया स्त्रीलिंग है ना, इसलिए दुनिया तो पूरी दुनिया सृष्टि एक भिखारिन है। पूरी सृष्टि का मनुष्य को इकट्ठा कर लो और सबके पास कोई न कोई मांग है। मांग पूरी तब होती है जिसकी तुम संतान हो, उस परमपिता परमात्मा से मिलन हो जाए, मांग खत्म, फिर आगे कोई कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो दुनिया तो एक भिखारिन है, इस भिखारिन से हम क्या मांग लें। मैं मांगू अपने स्वामी से, जहां जगत पिता भंडारी है, जिनकी पूर्ति भगवान खुद करते हैं, हम उनसे मांगे ना। दरबार में सच्चे सदगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक राजा साहब ने कहा, मेरे राष्ट्र में कोई भूखा नंगा नहीं होना चाहिए, सबके लिए छाया हो सिर पर, पेट में अन्न हो, तन पर वस्त्र हो, खुशहाली हो। तो मंत्रियों ने 10-20 करोड़ का बिल बन गया, सब मंत्री अफसरों ने बांटा बूटा। एक महात्मा नदी किनारे पड़े थे, उनसे कहा ले लो, क्यों फटीचर की तरह पड़े हो। ये नहीं समझ में आ रहा था कि महात्मा है, मतलब एक आदमी, तो बोले ही नहीं। फिर सबने जाके कहा, हजूर रामराज तो हम नहीं कह सकते, किंतु राम राज्य के बाद कोई व्यवस्था है तो आपके राष्ट्र की। सबके पास छाया, सबके पास वस्त्र, सबके पास खुशहाली, सबके पास अन्न, सब में साम्यता। एक व्यक्ति ऐसा है उसके पास कुछ है भी नहीं और लेता भी नहीं है। राजा बहुत खुश हुए, मात्र एक केस बचा, मैं स्वयं देखूंगा। राजा बड़े गर्व से गए, बोले उन महात्मा से, महात्मा की ओर इशारा करके, ऐसा करो इसको ये फार्म दे दो, जो 80-40 बीघा वाला है ना, ये फार्म दे दो, और ये जो खपड़ेल झोंपड़ी ये भी दे दो। महात्मा ने सिर हिला दिया, तो बोले कम है, अच्छा ठीक है, ये 2 गांव ही दे दो इनको। फिर बोले 5 गांव दे दो। अब मंत्री लोग सब परेशान, इतना पारितोषिक तो आज तक किसी ने पाया ही नहीं। तो मंत्री आगे आया, क्यों सनिश्चर घेरे है तुम्हें, हजूर आ गए, मालिक आ गए, मांग लो जो चाहो। तब महात्मा बोले मालिक है, बोले हाँ, तो मालिक से तुम्हें अवश्य मांगूंगा। तो राजा बहुत खुश हुए, अच्छा अच्छा जो चाहो मांग लो। तो बोले मालिक से हमें 2-4 चीज चाहिए, एक तो अपने खाना न खाए मुझे खिलाए, दूसरी मांग है मैं सो जाऊं तो जाग के पहरा दे मेरी रक्षा करे, तीसरा मैं कहीं चला जाऊं तो साथ साथ जाए, और मुझे कदाचित कोई चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत हाजिर करे। तो राजा बोला, अरे तू सिर फिरा, पता नहीं किधर उठ के चल दे, तो तुम्हारे पीछे पीछे हम चले जाएंगे तो स्टेट चौपट हो जाएगी पीछे। ऐसा नहीं, तुम खाओ मैं खाऊं नहीं, तुम सो और मैं पहरा दूं। ये हो सकता है कि जो खाऊंगा खिलाऊंगा पहरे देंगे सिपाही, तो मैं भी सोऊंगा तुम भी सोऊंगा, मैं जहां जाऊंगा साथ ले जाऊंगा। तो बोले राजन मुझे ऐसा ही मालिक उपलब्ध है, खुद खाता नहीं मुझे खिलाता है, मैं सो जाता हूं तो जाग के पहरा देता है, मैं जहां जाता हूं साथ जाता है, कदाचित कोई वस्तु की मुझे मांग हुई तो तुरंत देता है। तब राजा सनका बोले, क्या महाराज ऐसा हमें भी हो सकता। बोले अवश्य हो सकता है, तुम इस तरीके से भजन करो, नाम का जप कर, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके समर्पण के साथ शुरू तो कर और गीता पढ़। और 6 महीने बाद राजा में भी जागृति आ गई, भगवान उठाने बैठाने पढ़ाने समझाने लगे। ओ भगवान, जब तक जिस प्रभु की हमें चाह है और जिस सत्य पर हम खड़े हैं, जब तक वो आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा न हो जाए, मार्गदर्शन न करे, तब तक हमारी कक्षाएं मिडिल तक की है, इंटर तक की, मिडिल 10 तक की। उसके बाद में परीक्षक निरीक्षक एक, साधना पद्धति एक और परिणाम एक, और ये जागृति सदगुरु। और सदगुरु की शरण में सभी पहुंचते हैं। बुद्ध राजगद्दी मिल रही थी, छोड़ के चल दिए। महावीर को राजगद्दी मिल रही थी, छोड़ के चल दिए। भरतरी हरि चिपके थे तो भगवान ने एक जुक्ति लगा दिया, डंडा पड़ा तो भागे छोड़ के। हरिदास पा गया, उंगली माल ऐसे दुर्दांत दस्युओं ने प्राप्त कर लिया। भगवत लाइन पकड़ने के बाद हर हर व्यक्ति अनभिज्ञ है, वो भूल नहीं कर रहा है, वो क्या सही है क्या झूठ मालूम ही नहीं है। और जब ईश्वर पथ में साधना के पथ पर आ गया तब फिर भूल शुरू होती है। महाराज कहें घर में रह के भजन करो, गलती करोगे भगवान तुरंत क्षमा कर देंगे। साधु होके गलती करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये जो कड़े प्रतिबंध है नियम के, वो हम लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए तो बड़े भाग्य मान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, भाग्य से मानव तन मिला है, देवता लोग भी इस तन से आशावान है। ऐसा तन पाकर पाई ने जे परलोक संवारा, अपना परलोक संवारो। तीर्थ व्रत दान पुण्य नाम जप शास्त्र श्रवण सब भजन के अंतर्गत है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।